हम सभी के बीच में यज्ञ के बहुमूल्य रत्न आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। बहुत ही खुशी से एक हाथ की अव्यक्त ताली से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 72 से आपने बाबा का यह ज्ञान जीवन में धारण किया, 78 से आपने अपने जीवन को यज्ञ सेवा में समर्पित किया। आप समग्र भारत देश में चल रही धार्मिक प्रभाग विंग की सेवा के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी विशेषता है मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की नई नई पॉइंट्स को बाबा के बच्चों के सामने मक्खन के रूप में रखना, और इसी विशेषता के कारण सारे ही भारत देश में आपकी मांग रहती है। वर्ष दरमियान आप अनेक स्थानों पर भट्टियां कॉन्फ्रेंसिस शिविर आदि कराने के लिए जाते हैं। विदेश के भी कई देशों के अंदर आपने ईश्वरीय सेवा के अर्थ यात्रा की है। आज हम सभी के बीच में आप हैं, विषय है यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति। देखो निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अपने बच्चों को पूरा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस वर्षा देने के लिए, इस सृष्टि पर आने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इस सृष्टि पर बहुत बड़ा यज्ञ रचा, और इस यज्ञ की सेवा करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने पहले स्वयं को संपूर्ण समर्पण किया। ऐसे ही साथ साथ मम्मा को भी, देखो मम्मा की मां सबसे पहले आई, दूसरे दिन मम्मा ने देखा मां के अंदर चेंज, देखते मम्मा को लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, तो मां ने कहा आप भी जाके देख लो। मम्मा जब आई बाबा के सामने, बाबा को देखते ही मम्मा को लगा ये मेरा पिताजी है। तुरंत मम्मा ने निर्णय कर लिया मेरा जीवन में क्या करना चाहिए। तो ऐसे आप देखेंगे मम्मा ने भी शुरू शुरू में, आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि क्या चाहिए, योग युक्त युक्ति युक्त। देखो अमृतसर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मम्मा थी ऊपर कमरे में योग में बैठी थी, बहुत लोग आए हंगामा किया, कुछ भी नहीं, मम्मा अपने जगह पर योग युक्त। तो हंगामा करते करते अंदर घुसे, उनको पता चला इनकी मुख्य टीचर ऊपर है, तो मम्मा के सामने तक पहुंचे, ऊपर तक मम्मा अपने अवस्था में कि योग युक्त का अर्थ क्या है। परिस्थिति आएंगी, हंगामे होंगे, सामने वाला गुस्सा भी करेगा, लाल पीला होगा, मारने भी आएगा, लेकिन हमारे साथ कौन है, वो स्मृति चाहिए कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है, उसको कहते योग युक्त। अगर वो स्मृति है, परिस्थिति नहीं आएंगे से नहीं आएंगी, तो परिस्थिति आने के बाद हम मम्मा को याद करते, तो मम्मा ने क्या किया यज्ञ माता बन करके। तो हमें आज की दुनिया में, आज के वर्तमान समय में हमारे हर एक के सामने ये परिस्थिति है। तब बाबा ने कहा फॉलो फादर मदर, कि मम्मा के सामने कैसी परिस्थिति है, मम्मा उधर ही है, हलचल में नहीं आई, हिली भी नहीं, और नीचे उन किसी को समझाने के लिए भी नहीं आए, अपनी अवस्था में, अपने साथ मेरा काम नहीं, मेरे साथ कौन है उसका काम है, करण करावन हार कौन है, अपने योग युक्त अवस्था, बाबा को साथ रखते जहां हो जैसे हो उसी स्थिति में रहो, कितना भी कुछ भी हो। आज बाबा ने भूकंप के लिए भी बताया, कुछ भी हो जाएगा लेकिन हमारे साथ कौन है, एक बाल भी हिला नहीं सकता है। तब ये अगर स्मृति थी उसको कहते योग युक्त, युक्ति युक्त। वो सामने आए, अपने आप चुप बैठ करके मम्मा को देखकर, अवस्था को देखकर अपने आप चुपचाप चले गए। तो यज्ञ की मम्मा ने कैसी सेवा किया हर जगह पर जाकर के। तो ऐसे कहा, यज्ञ की सेवा कब होती है? पहले यज्ञ की पिता किसने स्थापन किया ये यज्ञ? स्मृति चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं, कोई देहधारी नहीं, बहुत लोगों ने यज्ञ किया। क्यों किया? साधु सन्यासी यज्ञ करते हैं, दशरथ राजा ने भी यज्ञ किया था, बहुत लोगों ने यज्ञ किया। लेकिन ये यज्ञ कौन कर रहा है वो समझ चाहिए। स्वयं सृष्टि का किस शास्त्रों में भी गाया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, जब इस भारत में धर्म की ग्लानी होती है और साइंस की महिमा होती है। हर एक व्यक्ति देखना साइंस के ऊपर फिदा है, क्योंकि साइंस ने सब कुछ बना के दिखाया, धर्म ने कुछ दिखाया नहीं। पहले भारत में सारे विश्व पर भारत का धर्म का गुरु कहते थे, आध्यात्मिकता का गुरु है भारत। सबकी नजर योग सीखना है, कुछ भी करना है तो भारत पर थी। लेकिन भारत वालों ने उसका सदुपयोग अभी भी नहीं किया, उसके कारण भारत धर्म के पर विश्वास चला गया। साइंस ने सब कुछ बना के दिखाया ऐसे समय पर, और ये साइंस क्या करेगा? स्थापना करने नहीं आया, विनाश करने के लिए आया। और धर्म की स्थापना करनी है, ऐसे समय पर स्वयं शिव बाबा आता है और ये यज्ञ रचता है। ये अगर हमारे बुद्धि में, अगर स्मृति में है, ये शिव बाबा का यज्ञ है। और बाबा ने कहा, इस यज्ञ में जो अपना तन मन धन लगाता है, जैसे बाबा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपने आप नहीं देगा, सभी बाबा के बच्चे हैं। कोई भी इधर बैठा हुआ रावण का बच्चा कोई भी नहीं, हर एक भगवान के बच्चे हर एक परम धाम से ही आए थे, और किधर से भी नहीं आए। लेकिन हर एक को बाप का वर्षा मिलना चाहिए तो मिलेगा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस हर एक को मिलना चाहिए। ये मिलेगा? आप अपने आप से पूछो। भाई जी कहता मिलेगा। अगर कलयुग और स्वर्ग किसको कहेंगे आप? कलयुग में किसी के पास देखो बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसी के पास देखो खाने के लिए इतने पैसे हैं, घर में खाने वाले कोई नहीं है, किसी के पास देखो खाने वाले घर में इतने हैं लेकिन धन ही नहीं है, संपत्ति नहीं है। तो ये तीनों में इम्बैलेंस है, एक है तो एक नहीं है, एक है तो एक नहीं, तीनों में इम्बैलेंस है, इसका नाम है कलयुग। तो शिव बाबा ने ये यज्ञ क्यों रचा? इसलिए रचा कि इन तीनों को बैलेंस करने के लिए, समान हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, एक आत्मा के पास निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से हरेक बच्चों का जीवन भरपूर रहना चाहिए। लेकिन ऊपर से दवाई नहीं भेजेगा, ऊपर से अनाज नहीं भेजेगा, विधान, इसलिए भगवान का नाम है, वो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। ये सब प्राप्तियां कैसे होंगी, तीनों में बैलेंस कैसे होगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे मिलेगा हर एक बच्चों को? क्योंकि यज्ञ स्नेह है, स्नेह हमारे पास है कि शिव बाबा का यज्ञ है, भगवान स्वयं आया है। लेकिन स्नेह के साथ सहयोग भी चाहिए, अगर सहयोग है तो भाग्य बनता है। सिर्फ स्नेह एक ही सब कुछ नहीं है, 100% हर एक का स्नेह है भगवान के प्रति, लेकिन उसके साथ अगर सहयोग नहीं है तो भाग्य नहीं बनता है। और भाग्य बाबा ने गारंटी दिया, बच्चे 21 जन्मों के लिए गारंटी है, नहीं तो सारे कल्प के लिए भी। तो आप सोचो वो भाग्य कैसे बनेगा? ये शरीर को कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आनी चाहिए, कैसे होगा ये? तो उसके लिए बाबा ने कहा ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में ये अश्व है। कहते हैं शास्त्रों में दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया, यज्ञ में हड्डी नहीं डालते हैं, भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये तन से बाबा कहता है ये शिव बाबा ने आकर के इस सृष्टि पर जो यज्ञ रचा है उस यज्ञ की इस तन के द्वारा आप एक मिनट इस यज्ञ की सेवा करते हो तो ये यज्ञ एक जन्म के लिए, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान देता है। बाप नहीं देता है, बाप विधि बताता है। क्या विधि बताए? जैसे यूनिवर्सल लॉ है, एक गेहूं का बीज खेती में डालो 50-100 दाने लगते हैं। भगवान ने नहीं दिया, ये नियम है। धरती के अंदर एक बीज बोना जरूर है, एक से 50-100 दाना लगते हैं। तो ऐसे भाग्य विधाता भगवान आकर ये विधान बताता है, बच्चे ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो आप? कल बहुत दर्द हो रहा है, बाबा मेरा दर्द ठीक करो, तुम कुछ विकर्म करो, ये तन और किसी के सेवा में लगाओ और मैं ठीक करूं। ये कहां की बात है, ये कैसे हो सकता है? अगर इस यज्ञ के बच्चे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अगर मैंने कुछ किया मेरा हिसाब किताब बन जाएगा, मुझे भी आपके जैसे इस चक्र में आना पड़ेगा। सिर्फ मैं विधि बताता हूं, उससे बच्चों का भाग्य बन जाएगा। तो अच्छी तरह से पूछो ये तन हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं। 24 घंटे हैं, 23 घंटे आप अपने लिए यूज करो, 23 घंटे में भी एक घंटे में भी बाबा कहता एक मिनट। अगर इस यज्ञ की कोई भी, इस तन के द्वारा आप इस यज्ञ की सेवा करते हो, ये यज्ञ बाप ने, ये यज्ञ आपको ऐसा वरदान देता है, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान देता है। ये विधान है, सिर्फ बाबा से स्नेह है, मेरा बाबा है, प्यारा बाबा तो है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे शिक्षा श्रीमत क्या दी? अगर उसका आप आचरण नहीं करो, श्रीमत पर नहीं चलो और कहो मेरा बाबा से 100% प्यार है, मीनिंगलेस। तो स्नेह है, प्यार है, तो कुछ करना भी पड़ता है। जिसके प्रति हमारा स्नेह है उसकी शिक्षा, जो वो हमको समझाता है, वो अगर हम आचरण में लाते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, प्रालब्ध बनता है। और उसकी बाबा गारंटी देता है मिनिमम 21 जन्मों के लिए इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी। अपने आप में चमत्कार नहीं है, ये विधान है। तो अपने आप से पूछो ये तन किसकी सेवा में मैं लगा रहा हूं? अगर आज आपको कोई भी कई कहेंगे मेरे पास 10 करोड़ रुपीस है, इतना सोना है, चांदी है, हीरा है, सब कुछ है, आप कह सकते हो मेरा है? जाते समय ले जा सकते हो? आपने अपनी सारी जिंदगी ये भौतिक संपत्ति कमाने में लगाया, लेकिन वो आपकी नहीं, सब कुछ यहां छोड़ के जाना है। आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, एक मिनट इस शरीर में भी रहने सकते हो, टिकट आया हो गया, हम इस सृष्टि में मेहमान है। ये शरीर बहुत अच्छा है, सुख देने वाला है, एक दिन रहते और नहीं, टिकट आया, मेरा शरीर भी नहीं कह सकते हो, इस शरीर में भी हम मेहमान हैं। तब बाबा ने कहा ये भगवान ने हमको अमानत दी है, उसकी सेवा में मैं कितना लगाता हूं वो पूछना चाहिए। लेकिन उसके साथ और एक शब्द ऐड होना चाहिए, कभी कभी हम तन से सेवा करते हैं लेकिन कहा निस्वार्थ सेवा का फल तुरंत मिलता है। कोई भी स्वार्थ नहीं चाहिए, नहीं तो स्वार्थ होता है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, क्योंकि माताएं भाई अनुभव चाहिए संसार में, ज्ञान यज्ञ की सेवा कैसे करें। आप कहेंगे आज मैं इधर कैसे बैठा हूं, आज से 40 साल पहले बॉम्बे में छोटे छोटे सेंटर होते थे, तो मैं कभी उस सेंटर में जाता था, कभी इधर, एक ही लाइन में थे। एक दिन एक सेंटर में मैं सिर्फ दो तीन दिन जाने वाला था, सदा नहीं, दो तीन दिन के लिए, लेकिन छोटा सेंटर और जमीन पर सिर्फ कारपेट डाला प्लास्टिक का, तो उस पर एक घंटा बैठो तो पांव दर्द करता है, अगर तन ठीक नहीं तो मन कैसे लगेगा। तो क्या करूं, तो दो दो नैपकिन ले आता था, पांव के नीचे डाल के बैठ जाता था। लेकिन मेरे बाजू में दूसरा भाई बैठता है, वो भी लगा कर बैठते, छोटा जगह है, तो वो, मैं अच्छी तरह से योग में बैठता हूं, दो मिनट के बाद वो अपना पांव चेंज करता, मुझे भी हिला देता है। अब मैं उसके लिए क्या करूं, और मैं सदा नहीं, दो तीन दिन आने वाला हूं इधर, तो भी सोचा कुछ करना चाहिए, क्या करूं, तो मेरा एक घंटा वेस्ट, तो क्या करूं मैं। तो छोटी बहन मुरली सुना रही थी, बहन जी कितना भी खर्चा हो आप इधर गद्दी फॉर्म कुछ डालो। उन्होंने कहा मैं दीदी को बताती हूं। दो तीन दिन के अंदर देखा उन्होंने फटाफट गद्दी डाल दिया, और तीसरे दिन मुझे कहा भाई जी आपको दीदी मिलना चाहती है। हमने कहा नहीं, आठ बज गया मैं जा रहा हूं। दूसरे दिन फिर कहा कि आप एक्यूरेट योग में बैठते हो, आपके अंदर सेवा भाव है, आपको मधुबन जाना चाहिए। हमने कहा नहीं जा सकता हूं, बहुत बिजी हूं। फिर भी मुझे लगा दूसरे दिन कि मुझे 10 करोड़ चाहिए कि भगवान चाहिए। नहीं, भगवान चाहिए। सवेरे आया और कहा मैं दो दिन के लिए जाऊंगा, और बहन जी ने 8 दिन की चिट्ठी लिख दिया, 8 महीना मधुबन मेरा पहली दफा। आठ महीना पहली दफा, और उस समय यहां 85 भाई बहने थे ऊपर 1978 में। तो भगवान की अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, भगवान लेता नहीं है, देता है, देने वाले का नाम है भगवान। लेकिन सेवा के अंदर मेरा नाम होना चाहिए। मुझे ओपनिंग पर बुलाया नहीं, मैंने इतना लाख रुपया दिया, किसको दिया, किसकी सेवा किया। अगर नाम मान शान इच्छा है कोई भी अंदर, तो वो सेवा तुरंत फलीभूत नहीं होती है। हां मिलता है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, लेकिन देरी होती है, मिलता जरूर, कुछ ना कुछ कनादाना मिलेगा। निस्वार्थ सेवा का फल तुरंत भगवान लेता नहीं है, तुरंत छप्पड़ फाड़ के देता है। इसलिए एक एग्जाम्पल बताया, तन की सेवा करो, स्वयं को भी औरों को भी सुख देना चाहिए। इसके साथ दूसरा देख लो, एक ही तन नहीं, धन भी चाहिए। धन कहां लगा रहे हो आप, लेके आए थे, ले जाएंगे। इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप जवाब देना, क्योंकि बाबा बहुत दफा कहता है बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना। मुरली सुनते हो, कभी मुरली में आता है दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होगा। बहुत दफा मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना। कैसे करेंगे, सिंपल उदाहरण बताता हूं, देखना, बहुत सूक्ष्म होता है, समझ में नहीं आता है। देख लो, बाबा ने मुरली बाबा सुनाता है, बाबा ने कहा बच्चे तन से सेवा करो, तो भाई जी ने सोचा बाबा आज तन से सेवा नहीं, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, आज नहीं कर सकता हूं। फिर बाबा ने मुरली में कहा बच्चे मन से सेवा करो, बाबा जहां तन लगेगा वहां मन भी लगेगा ना, मन यहां और तन वहां, नहीं आज मन से भी नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा बच्चे धन से सेवा करो, तो भाई जी ने देखा जेब में हां 100 रुपया है, क्या करना चाहिए। चारों तरफ देखा, थोड़े भाई बहने जमीन पर बैठे हैं, तो 100 रुपया में एक चेयर आएंगी। सीधा उठ के मार्केट में गया और एक चेयर लाके सेंटर में रख दिया, तो धन की सेवा किया चलेगा ना, तन तो नहीं लगाया, मन भी नहीं लगा सकता आज, तो धन तो लगा सकते हैं। और अपनी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता थी 100 रुपया जेब में था, सीधा मार्केट में गया, एक चेयर लाके सेंटर में रख दिया, तो चलेगा। बहन जी कहते नहीं चलेगा, भाई जी बताओ, हां तन से नहीं किया, मन से नहीं किया, धन से किया, एक तो कर सकता है ना, इसमें गलत क्या है, नहीं चलेगा, क्यों चलेगा। देखो माताएं कहती चलेगा, बहनें कहती नहीं चलेगा, भाई कहते क्या कहते हो, नहीं चलेगा क्यों? हाँ क्यों नहीं चलेगा? तब कहा कि बच्चे बाबा का श्रीमत है, मुरली बाबा का श्रीमत है, मुरली सुनकर अगर आप बाहर कुछ कर सकते हो, लेकिन इस हॉल में सेंटर में जो सेंटर की व्यवस्था करने वाली निमित्त आत्मा है, उस आत्मा को जरूर बताना बहन जी आज बाबा ने कहा कि तन से करो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन धन से सेवा करता हूं, करने की मेरी ताकत है, लेकिन मुझे विचार आया कि यहां खुर्ची कम है, चेयर कम है, मैं एक लेके आता हूं। अरे भैया नहीं, बहुत चेयर्स है लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए रखा नहीं है। आप पैसे भंडारे में डालो और कोई सेवा में काम में आएगा। अगर आपने मन में विचार आया श्रीमत है बाबा का और चेयर लाया, पहले से बहुत ढेर पड़ी हुई है, रखने के लिए जगह नहीं इसलिए रखा नहीं, इसके लिए ये सेवा करते समय श्रीमत बाबा का है फिर भी निमित्त आत्मा को, अगर यहां कुछ करना चाहते हो आप कि वहां के निमित्त आत्मा को पूछ के करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। नहीं तो श्रीमत बाबा का है, उसमें आपने मन मत मिक्स किया, ये समझ में नहीं आता किसी को, बाबा की मुरली है। उदाहरण के लिए और एक बताता हूं, देखो दो भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है, दोनों एक साथ एक ही बैंक में गए और एक बैंक वालों को एक ने 100 रुपया दिया, मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, और दूसरे भाई ने भी कहा मेरा भी 100 रुपया एक साल के लिए रख दो, और एक साल के बाद दोनों गए, एक को 100 रुपया दिया, एक को 110 रुपये दिया, और दोनों बात कर रहे हमने भी 100 रुपया दिया था, उसको 110 क्यों दिया, और एक ही बैंक में एक ही साथ दिया है, अंतर क्यों? एक शब्दों में अंतर देखना, सिर्फ एक शब्द कि उसने कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट, और एक ने एक शब्द ऐड किया, एक साल के लिए 10% इंटरेस्ट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। हर एक व्यक्ति यज्ञ की सेवा करता है, दुनिया की सेवा करते हैं, लेकिन करते समय भंडारे में जब पैसे डालते हो, बाबा बहन जी ने कहा था इसलिए, बहन जी ने कहा था इसलिए सेवा के लिए, तो बहन जी देंगी। भंडारे में डालते समय किसकी याद है? हाँ शिव बाबा, ये आपकी यज्ञ की सेवा। तो बाबा ने वादा किया है एक का पदम गुना देने का। दुनिया में भी कितने हॉस्पिटल खोलते हैं, कितना स्कूल खोलते हैं, कितना दान करते हैं, लेकिन किसको? शरीर को, आत्मा के लिए नहीं। शरीर एक जन्म के लिए, उसके बाद खत्म, जो दिया। अगर आत्मा के लिए कुछ करते हो, आत्मा कैरी फॉरवर्ड करती है, आत्मा अविनाशी है। तब बाबा ने कहा दान करते समय किसने कहा है? शुभ बाबा ने कहा, शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। धन बहुत लोग लगाते हैं, बाबा का जितने बड़े बड़े सेंटर बनते हैं धन लगाते हैं, लेकिन वहां इच्छा होती है मेरा नाम होना चाहिए, मैंने दिया था, ओपनिंग पर मुझे बुलाया नहीं, नाराज हो गए, सेंटर में जाना है बंद कर दिया। क्यों? किसको दिया? नाम मान शायद चाहिए, निस्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ से करेंगे एक जन्म के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने नाम मान कच्चा फल खाया। यज्ञ की सेवा करो, तन से मन से धन लगाओ, लेकिन निस्वार्थ रूप से धन चाहिए, क्योंकि हमारी अमानत नहीं, हम लेके नहीं आए थे, ना हम कल ले जा सकते हैं। कहते हम भगवान ने दिया हुआ है, ये कहने के लिए करते हैं, करते समय मेरा हो गया, तो वहां निस्वार्थ भाव नहीं रहता है। उसके कारण सेवा करने के बाद भी वो संतुष्टता नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, वो उमंग उत्साह नहीं है। नहीं तो बाबा की, भगवान की अगर आप 1% भी सेवा करते हो, पदम गुना तुरंत रिटर्न देता है। भविष्य में छोड़ दो, वो मिलेगा ही, गारंटी है। वर्तमान भी आपको इतनी खुशी होती है कि तुरंत बाबा देता है, सुख देता है, मैंने आज कुछ किया। भविष्य तो गारंटेड है, लेकिन वर्तमान में भी, लेकिन कंडीशन है निस्वार्थ चाहिए, मेरा नहीं, मैं आया, पांच विकार आए वहां, इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तीन प्रकार की पवित्रता है, राजा के लिए अलग है, प्रजा के लिए अलग है, रॉयल फैमिली के लिए अलग है, स्कूल में भी देखो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री है। तो बाबा ने कहा इच्छा अपवित्रता है, किसकी इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम मान शान, ये मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए। रॉयल फैमिली में जाने के लिए, राजा के परिवार में जाना चाहते हो, इच्छा अपवित्रता है। किसी भी, मेरा नाम है, हाँ इनका बहुत अच्छा आवाज, जैसे आज बाबा ने कहा यही बहन जी का, यही बहन जी ने क्लास करना चाहिए, इनके द्वारा ये योग अच्छा करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए, ज्ञान किसका, कौन सुना रहा है, सुनाने वाला कौन, उसको भूल गए, साकार के प्रभाव में आ गए, व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रभाव में आ गए। तब बार बार बाबा याद दिलाता है, देखना रोज मुरली में है बच्चे, दुनिया में भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी, विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, और यहां भी राजयोग है, दोनों में अंतर क्या है, भगवान कौन सा राजयोग सिखाने आया जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिखाने आया, यहां एक ही अंतर है कि बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो, आत्मा का आवाज ऊपर जाता है, नहीं तो कितना इसने कितना तपस्या किया तो भी क्रोध जीत नहीं सकते, क्रोध को मिटा नहीं सकते हैं, तपस्या करना ही सब कुछ नहीं है, एक क्रोध को भी जीतना चाहते हो तो भी शक्ति चाहिए। कहते विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया लेकिन क्रोध को भी जीत नहीं सका। तो बाबा ने विधि बताया यहां कि बच्चे आत्मा पहले समझो, आत्मा लाइट है, उसके संकल्प लाइट है, वो ऊपर जाते हैं। अगर शरीर का भान है, स्मृति है, भारी है, संकल्प के अंदर भी भारी, वो ऊपर नहीं जाते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, आप बात कर सकते हो, कर सकते हैं, नंबर चाहिए। अगर हम यहां, अब बाबा भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, हमारा आवाज बाबा तक पहुंचेगा, नंबर चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी पहले बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो कहा यज्ञ के प्रति, यज्ञ के पिता के प्रति स्नेह है, स्नेह के साथ सहयोग चाहिए। सहयोग भी तीन प्रकार से कम एक तन हम किसकी सेवा में लगा रहे, 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे में 23 घंटा अपने लिए यूज करो, शरीर के लिए यूज करो, बाकी कोई भी कर्म के लिए, एक घंटे में भी 10-15 मिनट, बाबा कहता है एक मिनट भी इस यज्ञ की, किसी भी प्रकार के तन की सेवा करो। नहीं तो आपने देखा किसी के पास बहुत धन है, मन भी अच्छा है, लेकिन तन सदा बीमार। हम कहते हैं हम रोज योग करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन तन बीमार, क्यों, तन की सेवा नहीं किया। तन तीनों चीज चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, बाबा के पास कुछ नहीं, बाबा दवाई नहीं देगा, विधान बताता, बच्चे ये तन इस यज्ञ की सेवा में लगाओ, ये यज्ञ आपको वरदान देगा। तब का यज्ञ की सेवा कैसी करनी चाहिए, कहीं भी रहो, छोटा सा एक गीता पाठशाला भी, वो भी इस सृष्टि पर शिव बाबा ने आके ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की तन से किसी न किसी प्रकार से रोज सेवा चाहिए, जब तक इस शरीर में हो। कल्प में एक ही चांस मिलता है, सारे कल्प के अंदर डायरेक्ट सर्वशक्तिवान शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करने का चांस सारे कल्प में ये एक ही दफा मिलता है, और इसका फल सारे कल्प के लिए मिलता है। मनुष्य सारी सृष्टि में आप किसी की सेवा करो तो एक जन्म के लिए देगा, जब तक ये शरीर है, आगे के लिए नहीं, क्यों कि वहां हम शरीर को देखकर भौतिक रूप से करते हैं, शरीर एक दफा है, दोबारा नहीं, खत्म हो गया। लेकिन आत्मा की अगर आप सेवा करते हो, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, तो वो अविनाशी फल देता है। तो सेवा करते समय ये स्मृति में रहे, धन भी भंडारी में डालते हो, धन के किसी प्रकार की सेवा करते हो, स्मृति में कौन है, किस स्मृति से सेवा कर रहे हो, तब इस प्रकार का फल है। तो स्मृति में सदा रहे कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा के यज्ञ की सेवा अर्थ है ये। तो एक का पदम गुना तुरंत जमा होता है। अगर सेवा करते समय भाव अलग है, नहीं इन्होंने कहा था, उनको देखकर, इसने कहा था, उसके लिए कर रहे हो, तो ये दोनों में अंतर है। दोनों सेवा करते हैं, सिर्फ एक शब्द में देख लो अंतर हो जाता है। इसलिए तन कहां लगा रहे हो, धन कहां लगा रहे हो, मन कहां लगा रहे हो। मन जीत जगत जीत कहा, मन में सारे दिन में क्या है, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर, अपने आप किसी का मन देवताओं जैसे सदा हर्षित नहीं रह सकता है, यह अपने आप चमत्कार नहीं है, यहां विधान है। तो यहां बाबा ने कहा अगर मन को सदा हर्षित निर्मल, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता है और नंबर वन राजयोग भी है। सिंपल साधारण रूप से कल आप करके देखना, मम्मा का डे मनाते हो आप, पुण्यतिथि मना रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, मम्मा ने, मम्मा का चित्र भी देख लो आप, बिल्कुल गंभीर मौन, हंसता हुआ, ज्यादा बोलता हुआ नहीं है। तो मम्मा को अगर आप कुछ देना चाहते हो, शुभ भावना भी, श्रद्धांजलि कहते हैं, तो कल एक दिन आप करके देख लो, आज से सुन लो, सवेरे उठते ही मौन, लेकिन बोलना जरूर है, मौन भी रखना है लेकिन बोलना जरूर है, मुख से बोलना नहीं, किसी पर नजर गई, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, कोई भी हो देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनको सदा सुखी बनाओ। हर एक को देखते ही बाबा ने कहा बच्चे मेरे से लेके दान करो, तो मेरी स्मृति में कौन है, मैं नहीं दे रहा हूं, बाबा दे रहा, बाबा से लेके दान करो। बाबा ने कहा बच्चे सेवा में संगम पर मैं आया हूं बच्चों को मदद करने के लिए, यूज मी, मेरे से सेवा जितना चाहे उतना ले लो, सारे क्लब में एक ही दफा में मिलेगा और उसमें भी थोड़ा समय है। तो कल एक दिन देख लो सवेरे से शाम तक, किसी पर नजर जाने दो, एक दिन करके देख लो आप, देखना कल रात को सोएंगे एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, और कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा। तो ये मन को जीत लो, मन को स्वच्छ रखो, किसी पर नजर गई, अरे माताजी कहां से आई, ये भाई ने चश्मा क्यों लगाया, कोई ना कोई विचार आएगा, कारण हमारी दृष्टि शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्मृति है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर जो है वो आत्मा शुभ बाबा का बच्चा है, हमारा है, एक परिवार है, वन गॉड वन फैमिली। तो उनको देखते ही हमारे मन, अगर मुझे ये स्मृति है मैं शुभ बाबा का बच्चा हूं, अपने आप शुभ भावना निकलती है, दुआएं निकलती है। आज बाबा ने मुरली में कहा श्रेष्ठ संकल्प युक्ति युक्त योग युक्त किसको कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प निकलता है। श्रेष्ठ कौन है, शुभ बाबा, उसको स्मृति में रखते हुए संकल्प, बाबा नहीं शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। अगर निरंतर एक घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट में 60 बाबा के बच्चों को दे सकते हो, नंबर वन आना है तो कम से कम एक भगवान के एक बूंद के प्यासे एक व्यक्ति को भी देखकर शुभ संकल्प आता है, तो बाबा ने कहा कि ये नंबर वन पवित्रता है। पहले संकल्प आता है, फिर दृष्टि जाती है, फिर बोल निकलते हैं, फिर कर्म निकलता है। सारे दुखों का, अपवित्रता का कारण मन है। कहते हैं औरों के प्रति शुभ सोचो। कैसे सोचे? बहन जी को देख के भाई के नहीं कह सकते हो। हां, कोई किसी को भी देख लो, देखते ही ये मन में अगर श्रेष्ठ संकल्प आता है, इसका नाम है नंबर वन पवित्रता। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग है। इसको शास्त्रों में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है तो भी और एक पत्थर मारेंगे नहीं, उनका भी कल्याण होना चाहिए। हम नहीं कर सकते, शुभ बाबा यह आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो। वो कल्याण करने आया है, और बाबा अपने आप नहीं करेगा। बाबा ने कहा, मैं बच्चों के बिगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूं, नहीं तो मैं अपने आप ऊपर से तथास्तु कर देता था। नहीं, बच्चों का भाग्य बनाना है, बच्चों के बिगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो क्योंकि बच्चों का भाग्य बनाना है, बच्चों को कल राजा बनाना है, बच्चों को वर्षा देना है, तो उनके द्वारा बाप करता है। तो हमें भी स्मृति चाहिए कि इनको देखते ही शुभ बाबा आप दे दो, मैं नहीं देता हूं। कभी भी मैं अपने जेब से अभी दान नहीं करना, फिर वो द्वापर युग से कलयुग तक आधा कल्प करना, अभी बाबा से लेके दान करो। क्योंकि बाप सदा साथ है, उसको कहते हैं कंबाइन। अगर ये स्मृति है, चलते फिरते किसी को देखते ही सारा दिन में हमारे साथ कौन था, बोल रहे हम मुख से नहीं, मन के वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से यहां से वहां कोने तक पहुंचता है। मन से बोलना सीखो, ये मम्मा की खास आदत है। मम्मा खास बोलते बच्चे, साइलेंस पावर, शांति की शक्ति, कि मुख से नहीं बोलो। मन का संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है। तो इसके लिए कल एक दिन उपयोग करके देख लो, ज्ञान बहुत है, दवाई बहुत है, वो लेने के बाद भी ही विश्वास होता है, ये दवाई काम करती है। ऐसे ये भी कल एक दिन करके देखना। तो तब कहा कि तन कहां लगाना चाहिए, यज्ञ की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, मन कैसा लगाना चाहिए। और भी है मन के लिए कि बाबा कहते हैं, ज्ञान के बिगर भी गति सदगति नहीं। हम मुरली सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। कर्म जैसे कल करते थे वैसे आज भी करेंगे, कल भी वैसे करेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए ज्ञान की एक मुरली के पॉइंट याद रखो, लिख के रख दो, बार बार अपने को पढ़ाओ, कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ। जैसे शरीर को हम तीन दफा खाना खिलाते हैं, आत्मा को भी तीन दफा चाहिए, सवेरे दिन में शाम को। फिर कोई मिले, अगर बोलना ही चाहते हो, आदत है, तो मुरली के पॉइंट सुना। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, इस मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए, शुभ समाचार निकलना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा है, कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुख से जरूर बोलना जरूरी है, तो आज के मुरली के पॉइंट हमारे मुख से निकलना चाहिए, मुख कमल है। तो कर्म इस यज्ञ की क्या क्या करना चाहिए, बाबा क्या क्या सिखाता है कि अगर सारे कल्प के लिए निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्ति चाहिए, तो अपने आप नहीं, खेती में भी एक बीज बोएंगे तो कुछ लगता है, और वो भी गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं उगेगा, चावल नहीं उगेगा। आपको गेहूं का बीज बोता हूं, भगवान भोला नाथ है जो चाहे कर देगा, चावल उग जाएगा नहीं। ये भी याद रखना, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएंगे वही मिलेगा। ये भी विधान जानना चाहिए। तो पूछना तन मन धन, इस एक समय, हमारे पास समय भी है, बहुत समय है, टीवी देखने में, बाकी इधर उधर जाने में बहुत समय, वो सारे कल्प करेंगे हम, लेकिन अब ये समय ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ये सेवा आपको सारे कल्प का भाग्य देंगी। अगर किसी के पास अगर आप नौकरी करेंगे, 1,00,000 रुपए देगा, लेकिन यहां ही छोड़ के जाना है। 1,00,00,000 रुपए की कमाई करेंगे, लेकिन यहां ही छोड़ के जाना है। लेकिन अगर यह बाबा की यज्ञ की किसी न किसी प्रकार से सेवा करो, समय है, अगर इच्छा है तो समय है। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ऐसे नहीं समय नहीं, नहीं बहुत समय है। देखो यज्ञ में यहां भी अनाज साफ करते हैं, थोड़ा समय मिला, घर में भी अनाज साफ करती माता है, सब्जी काटनी है, थोड़ा आधा घंटा जाओ सब्जी काट लो, किसी को रोटी बनाना आता है आधा घंटा 15 मिनट रोटी सब्जी बनाने जाओ, कोई ना कोई कर्म करो। जैसे सवेरे बहन जी कह रही थी कि जाते जाते खुर्ची को ठीक करके रखो, ये भी यज्ञ की सेवा, किसी व्यक्ति की नहीं है ये, कोई न किसी ने किसी प्रकार का शिव बाबा की यज्ञ की याद रखना, स्मृति रखना, ये बाबा की यज्ञ है। और एक का पदम गुना जमा होता है सेंटर में भी। देखो एक माता कह रही थी, अकेली माता है, कहती भाई जी मैं रोज 2 पाव सब्जी ले जाती हूं। हमने कहा माता जी आप अकेली हो? कहते मेरा बेटा भी तो है, उसको भी भूख लगती है, बाबा को भी सेंटर में 1 पाव सब्जी देती है और 1 पाव अपने ले ले जाती है। तो कितनी भावना है, तब बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, माताओं को पता है, तब भारत माता की जय कहा। तो सेवा करते समय सारे दिन में ये स्मृति रहे, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तन कहां लगा रहे हो, मन कहां लगा रहे हो, धन कहां लगा रहे हो, इन तीनों प्रकार के अगर ध्यान रखते हो। जो कहा यज्ञ के प्रति स्नेह है, स्नेह के साथ संयोग भी चाहिए। ओम शांति।